आस्था आहान की ओर देखकर बोली, लेकिन आप मुझे अंदर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? अरे, मैं तो यहाँ पर इस पागल नौकर को ये समझा रही थी कि इस तरह से पौधे तोड़कर ना फेंके, उन पौधों को ना काटें, क्योंकि अगर तुम्हारे उस बंदूक वाले मॉन्स्टर भाई ने ये देख लिया तो पक्का इसकी जान ले लेगा। मैं तो यहाँ इसको बचाने के लिए आई थी, ऊपर से ये मुझे ही तड़ी पर तड़ी दिखाया जा रहा है, उल्टी सीधी बातें सुनाई जा रहा है। इतना ही नहीं, इसने मेरा हाथ भी पकड़ा था, क्योंकि अगर तुम्हारे उस बंदूक वाले मॉन्स्टर भाई ने ये देख लिया तो पक्का इसकी जान ले लेगा। मैं तो यहाँ इसको बचाने के लिए आई थी, ऊपर से ये मुझे ही तड़ी पर तड़ी दिखाया जा रहा है, उल्टी सीधी बातें सुनाई जा रहा है। इतना ही नहीं, इसने मेरा हाथ भी पकड़ा था। आस्था के भोलेपन में कही गई इन बातों पर आहान ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। मन ही मन वो सोचने लगा, भाभी, वाकई आपके साथ जो हमने थोड़ा सा टाइम बिताया बहुत ही ज्यादा कीमती था, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है अरमान भाई को उन्हीं के सामने बंदूक वाला मॉन्स्टर कहने पर वो आपकी जान ले ही लेंगे। आई मिस यू भाभी, मिस यू सो मच। वो आस्था को बड़ी ही प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। आहान मन ही मन बड़बड़ा रहा था। अचानक अरमान का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया। उसने गुस्से से आस्था का हाथ कसकर पकड़ लिया और लगभग उसे घसीटते हुए गार्डन से सीधा हॉल में ले आया। आहान पीछे से चिल्लाता रहा, भाई सुनो, छोड़ दो उन्हें, भाई भाई, हेलो भाई, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो भाई, छोड़ो। वो पीछे पीछे दौड़ने लगा। साथ ही साथ उसने आकाश, सुमित और ध्रुव को ग्रुप में मैसेज कर दिया, सब जल्द से जल्द घर आ जाएं कि घर पर एक तूफान आने वाला है। आहान की आवाज़ सुनकर दादाजी भी वहां आ गए। दादाजी ने अरमान का हाथ आस्था के हाथों में देखा तो वो भी थोड़ा सा डर गए, भी जल्दी से उनकी ओर आए और बोले, अरमान, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? दादाजी की थोड़ी सी तेज़ आवाज़, अरमान, ये क्या हो रहा है, सुनकर आस्था की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो हैरानी से अरमान की ओर देखने लगी। उसे थोड़ी देर पहले कही गई बातें याद आने लगी। आस्था के हाथों की कंपकंपी छूटने लगी, उसकी टांगें पूरी तरह से कांपने लगी थीं। अरमान का नाम ही उसे डराने के लिए काफ़ी था, लेकिन यहाँ तो साक्षात अरमान उसकी आंखों के सामने खड़ा हुआ था। आस्था बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, डर के मारे वो बेहोश होकर अरमान की बाहों में झूल गई। किसी को पता ही नहीं चला। आस्था को इस तरह से बेहोश होता हुआ देखकर आहान चिल्ला उठा। दादाजी भी परेशान हो उठे। ध्रुव, आकाश और सुमित, जो ऑलरेडी वहां आने के लिए निकल चुके थे, सिंघानिया मेंशन पहुंच गए। वो सब इस तरह से आस्था को बेहोश होता हुआ देखकर पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। जल्द ही आस्था को हॉल में बने हुए सोफे पर लिटाया गया और सभी अब गुस्से से अरमान को देखने लगे। आहान बोला, मैं आपसे कह रहा था ना भाई, रुक जाइए, लेकिन आप है कि मेरी कोई बात नहीं सुनते, देखिए वो बेहोश हो गई है। आकाश ने कहा, अरमान, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ध्रुव बोला, अरे कम से कम एक बार बात तो सुन लेते, वो वैसे इतनी मासूम है, वो इतना ज्यादा डरी हुई है तुम्हें देखकर, तो तुम्हें क्या जरूरत थी उनका हाथ घसीटकर इस तरह से हॉल में लेकर आने की? दादाजी बोले, अरमान, और कितनी गलतियां करोगे तुम, आज तो तुमने हद ही पार कर दी। सभी अलग अलग तरीके से अरमान को डांट लगा रहे थे। अरमान बुरी तरह से चिढ़ चुका था, हैरान था कि अचानक से इन सब लोगों को हुआ क्या है। अरमान के सामने इन सब लोगों की जुबान नहीं खुलती थी, लेकिन ये सभी एक अनजान लड़की के लिए उसे इस तरह से बातें क्यों सुना रहे हैं? अरमान जोरों से चिल्लाया, बस कीजिए आप लोग, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, और ये लड़की है कौन, क्यों आप सब लोग को इसकी इतनी ज्यादा फिक्र हो रही है? अरमान के सवाल ने सबको चौंका दिया। वे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, फिर चारों ने दादाजी की ओर इशारा किया। दादाजी समझ चुके थे कि वो सब उनसे क्या कहना चाहते हैं। उन सबका इशारा समझते हुए दादाजी अरमान के सामने जाकर खड़े हो गए और बोले, ये आस्था है, आस्था अरमान सिंघानिया। ये सुनकर अरमान के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने अपनी दो उंगली उठाकर अपने माथे पर रख दी और गुस्से से अपने माथे पर टेप करने लगा। चारों सूखे पत्ते की तरह कांपने लगे थे। वो समझ चुके थे कि अरमान का गुस्सा जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब वो इसी तरह की हरकत करता है। दादाजी ने अरमान के बढ़ते गुस्से को देखा। वे अरमान के ठीक सामने जाकर खड़े हो गए और बोले, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सारी बातें जानने के बाद तुम्हें काफी गुस्सा आ रहा होगा और अजीब भी लग रहा होगा। हम मानते हैं कि हमने तुम्हारी शादी प्रियंका से तय की थी, लेकिन हुआ ये कि शादी वाले दिन ही प्रियंका शादी से पहले ही मंडप से भाग गई। तब हमने मजबूरी में प्रियंका की ही कजिन आस्था को शादी करने पर मजबूर किया और अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए उसे मंडप में बैठा दिया। अरमान गुस्से से लाल सुर्ख आंखों से अपने दादाजी को घूरने लगा। दादाजी फिर बोले, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हें इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन हमने जो कुछ भी किया उस वक्त खानदान की इज्जत को बचाने के लिए किया। तुम एक बार ठंडे दिमाग से सोचो अरमान, इस तरह गुस्सा करने से सिचुएशन बदल नहीं जाएगी। अरमान अपने सर पर दो से तीन बार टेप करते हुए बोला, आपने गलती कर दी दादाजी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दादाजी, कम से कम ऐसा कुछ करने से पहले आपको मुझे इस बारे में बताना चाहिए था, आपने गलती कर दी दादाजी, गलती कर दी। ये कहकर अरमान सोफे पर लेटी हुई बेहोश आस्था को गुस्से भरी नजरों से देखता हुआ सीधा अपने कमरे में चला गया। अरमान के कमरे में से सामान के टूटने फूटने की आवाज आनी शुरू हो गई।
चारों हैरानी से दादाजी की ओर देखने लगे और बोले, दादाजी अब क्या किया जाए, अरमान भाई का गुस्सा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और आप अच्छी तरह से जानते हैं जब उनका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो बेजान चीजों को तोड़ फोड़ कर उनका नक्शा बिगाड़ देते हैं। अभी पिछले महीने ही तो उनका कमरा रेनोवेट किया गया था, सारी चीजें इम्पोर्टेंट विदेश से मंगाई गई थी और अब इतनी जल्दी सारा सामान तोड़ा जा रहा है तो मतलब एक बार फिर से हमें रेनोवेशन टीम को बुलाना होगा। आकाश के कहने पर दादाजी उसकी ओर देखकर बोले, अपनी फालतू की बकवास बंद करना लायक। और ध्रुव की ओर देखकर बोले, वाकई डॉक्टर है या नहीं, तुझे क्या दिखाई नहीं दे रहा है, बहू कब से बेहोश पड़ी हुई है, जाकर उसका इलाज क्यों नहीं कर रहा है। ध्रुव जल्दी से आगे आया और बोला, सॉरी सॉरी दादाजी, वो अरमान भाई को गुस्से में देखकर मेरा तो दिमाग ही फ्रीज हो गया, भाभी की ओर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, वो जल्दी ही आस्था को चेक करने लगा। ध्रुव ने जल्दी ही आस्था को चेक करके एक इंजेक्शन दे दिया और दादाजी की ओर देखकर बोला, दादाजी घबराने वाली कोई बात नहीं है, भाभी केवल डर की वजह से बेहोश हुई है, अभी थोड़ी देर में होश भी आ जाएगी। ध्रुव के कहने पर दादाजी ने राहत की सांस ली। अचानक अरमान के कमरे से बंदूक के फायर करने की आवाज सुनाई दी। आज के लिए इतना ही, आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेस्ड बिलियनेयर हबी।